तो काल हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते थे, हु इज गॉड, भगवान कौन है, इसी के बारे में हम लोग भगवान को जानकारी करने के लिए कैसा शास्त्र का भित्ति का ऊपर भगवान कौन है हम लोग उसी का ऊपर जानना चाहिए। शास्त्र का विचार का अनुसार भगवान शब्द का संज्ञा क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मैं बताया। अब भगवान को लेकर हमारा समाज में जो विभ्रांति है उसी के बारे में मैं बताया। तो मैं आज और एक दो बात भगवान के बारे में बता के फिर भगवान प्राप्त भगवत प्राप्ति का उपाय के बारे में बताऊंगा। तो शिव भगवान है ना नहीं है इसके बारे में बताऊंगा। और आजकल समाज में जो नई भगवान बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के बारे में बताऊंगा। ये तीन तत्व बताने के बाद भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, पंथा क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काल हम लोग चर्चा किए थे देवता और भगवान, इंद्र चंद्र वरुण अग्नि देवता, ये देवता होते हैं, कृष्ण राम नारायण वामन नरसिंह, इनको भगवान बोला जाता है। तो शिव जी, हाँ, ये इसको भगवान को बोलते हैं विष्णु तत्व। और जिन्हें देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये सबको जीव तत्व बोलते हैं। ये जीव तत्व और भगवान होते हैं विष्णु तत्व। तो शिव कौन है? तो शिव के बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, शिव साधारण देवता नहीं होते हैं। इसलिए मैं काल बोला था देवता भी ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ मालूम है, याद है आपका? ईश्वर का अर्थ क्या मैं काल बताया था? नियंत्रण करता, जो नियंत्रण करते हैं उनको ईश्वर बोलते हैं। आप भी है क्या कि ईश्वर हो? आपका घर को ईश्वर तो नियंत्रण करते हो, लेकिन आप मिनी ईश्वर, मिनी छोटा ईश्वर हो। तो देवता लोग ईश्वर होते हैं। और शिव महादेव महेश्वर होते हैं। और कृष्ण भगवान परमेश्वर, ईश्वर महेश्वर और परमेश्वर। तो शिव का स्थान एक स्पेशल होता है, वो साधारण जीव नहीं होते हैं, साधारण देवता भी नहीं है। भगवान और देवता के बीच में शिव तत्व होता है। शिव का प्रकाश, शिव का तत्व के बारे में बताऊंगा। तो भगवान विष्णु वो पुरुष होते हैं, परम पुरुष। विष्णु पुरुष परम पुरुष होते हैं। और उनका माया शक्ति को प्रकृति बोला जाता है। ये भौतिक जगत जो माया से सृष्टि हुआ उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति के नारी होते हैं, प्रकृति नारी शक्ति माया। अब भगवान परम पुरुष होते हैं। तो परम पुरुष भगवान का ये लक्षण होता है, जब भगवान कभी माया को स्पर्श करते नहीं, माया भगवान से बहुत दूर रहते हैं। तो माया तो प्रकृति होता है, तो पुरुष प्रकृति का स्पर्श नहीं करने से सृष्टि कैसा होगा? प्रकृति आपसे सृष्टि कर नहीं पाएंगे। कोई पुरुष का संस्पर्श में आएंगे तो प्रकृति सृष्टि कर पाएंगे। तभी भगवान विष्णु तो परम पुरुष है, लेकिन प्रकृति तो माया है। तो परम पुरुष तो माया का स्पर्श नहीं करेंगे तो भौतिक जगत का सृष्टि होगा कैसा? इसीलिए भगवान विष्णु ने आपको शिव रूप में प्रकट करते हैं। ब्रह्म संहिता में ऐसा वर्णन आता है, जब संभूतन को संभूत प्राप्त होकर शिव रूप में आत्म प्रकाश करते हैं। और शिव जी महामाया का संस्पर्श करते हैं। महामाया कौन है? पार्वती या दुर्गा देवी। महामाया का मूर्त रूप होते हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी प्रकृति होते हैं, महामाया होते हैं। भगवान को दो माया होता है, एक योग माया होता है और एक महामाया बोलते हैं। योग माया उसी शक्ति को योग माया शक्ति बोलते हैं, जो शक्ति का द्वारा भगवान आध्यात्मिक जगत को प्रकाश करते हैं और आध्यात्मिक जगत को पालन करते हैं। भगवान का वही शक्ति को योग माया बोलते हैं। और जो शक्ति का द्वारा इस भौतिक जगत का सृष्टि होता है, प्रकाश होता है, भौतिक जगत का पालन होता है, भौतिक जगत का संहार होता है, उसी शक्ति को महामाया बोलते हैं। दुर्गा देवी या पार्वती देवी इस महामाया का मूर्त रूप होता है। तैसा भगवान विष्णु आपको शिव रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि विष्णु पार्वती को स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं वो तो माया है। शिव रूप में प्रकट करके शिव का द्वारा पार्वती को स्पर्श करते हैं, फिर सब ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। इसी भगवान का गुण अवतार होता है। भगवान का कई तरीके का अवतार होता है। भगवान का पुरुष अवतार होता है, गुण अवतार होता है, लीला अवतार होता है, मन्वंतर अवतार होता है, युग अवतार होता है, सत्यावेश अवतार होता है। छह तरीके का भगवान का अवतार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों ने कृष्ण का अवतार होता है, गुण अवतार। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों गुण अवतार, लेकिन तीनों का स्थान फरक फरक होता है। तीन तत्व फरक फरक होता है, अलग होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्मा जीव तत्व होते हैं, जो कि जीवात्मा वो ब्रह्मा पद तक प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन शिव बन नहीं पाएंगे। कोई शिव बन नहीं पाएंगे। शिव बहुत स्पेशल तत्व होते हैं। शिव जीव तत्व नहीं होता है और शिव विष्णु तत्व भी नहीं होता है, उनका बीच में होता है। और शिव वैष्णवानां यथासम्भु, भगवान विष्णु का भक्तों को वैष्णव बोलते हैं, गणेश का भक्त को गणपत्य बोलते हैं, शिव जी का भक्त को शैव बोलते हैं, सूर्य भगवान का भक्त को सौर्य बोलते हैं, और शक्ति देवियों को जो उपासना करते हैं दुर्गा भक्त को शाक्त बोलते हैं। तो भगवान शिव जी वो परम वैष्णव है, उनका शंभु बोलते हैं, वैष्णवानंद तथा शंभु। जितना सारी वैष्णव होते हैं शिव जी परम वैष्णव होते हैं। शिव जी ध्यान करते हैं। किसको ध्यान करते हैं? ये भगवान कृष्ण का एक प्रकार संकर्षण बलराम, शिव जी बलराम का ध्यान करते हैं। तो शिव जी भगवान कृष्ण का विष्णु का परम भक्त होते हैं। मैं जब दक्षिण भारत जाता हूँ तो दक्षिण भारत में सब बहुत पंडित लोग होते हैं, उधर बहुत बड़ा बड़ा ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण का ब्राह्मण लोगों ने भगवान विष्णु का एकदम कट्टर फॉलोअर होता है, स्ट्रांग वैष्णव। और कोई कोई शिव का फॉलोअर होता है, शैव उसको बोलते हैं, और वैष्णव आचार्य होता है और शैव आचार्य भी होता है। कभी कभी दो ग्रुप में बहुत झगड़ा लगता है। विष्णु भक्त ने बोलते हैं विष्णु बड़ा है, शिव भक्त ने नहीं शिव बड़ा है, बहुत तर्क लगता है उसका ऊपर। विष्णु बड़े तर्क का मतलब शास्त्र का भित्ति का ऊपर, शास्त्र से लोग तर्क करते हैं विष्णु बड़ा है ना शिव बड़ा है, कौन बड़ा है आप लोग बताइए? शिव बड़ा है ना विष्णु बड़ा है? हाँ शिव बड़ा है विष्णु बड़ा है? कौन बड़ा है जोर से बोलिए? विष्णु बोलते हैं, क्योंकि हम तो विष्णु भक्त हैं, इसलिए आप लोग विष्णु बोलेंगे। तब मैं बोलता हूँ शिव बड़ा है, शिव बड़ा है, नहीं शिव बड़ा है। कैसा शिव बड़ा है ना, भगवान विष्णु ने बताया मेरे से मेरा भक्त बड़ा है। तो शिव जी भगवान विष्णु का भक्त है तो इसीलिए वो विष्णु से बड़ा है, इसमें तर्क करने का क्या है। जो विष्णु भक्त है, जो वैष्णव होता है, विष्णु भक्त होते हैं, शिव जी विष्णु से बड़ा कोई बोलता है तो मानता, ठीक है, सही बात है, शिव जी विष्णु से बड़ा है। तो क्योंकि भगवान विष्णु ने बताया मेरे से मेरा भक्त बड़ा है, तो शिव जी भगवान विष्णु का परम भक्त है इसलिए वो बड़ा है। तो आध्यात्मिक जगत में और लोग का संपर्क ऐसे होता है, भगवान और भक्त, भक्त बोलता है मेरा प्रभु बड़ा है, भगवान बोलता है नहीं नहीं मेरा भक्त बड़ा है, ये लोग का कंपटीशन चलता है, भक्त और भगवान में कंपटीशन चलता है। भक्त बोलता है मेरा प्रभु बड़ा है, प्रभु बोलते हैं ना मेरा भक्त बड़ा है। भगवत साम्राज्य में बड़ा होने के लिए कंपटीशन नहीं, छोटा होने के लिए कंपटीशन होता है। तो भौतिक जगत में हम बड़ा, मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा, इसीलिए कंपटीशन चलता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मैं कितना छोटा बन जाऊंगा, भगवान भक्त बोलते हैं मैं भगवान का दास हूं, और भगवान बोलते हैं मैं भक्त का दास हूं, समझते हैं माता जी लोगों ने, समझते हैं हाँ कि नहीं। हाँ, भगवत साम्राज्य में बड़ा होने का आकांक्षा नहीं होता है, प्रभु होने का वासना नहीं होता है, छोटा दास होने का वासना होता है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु कृष्ण भगवान, उनका भी आनंद आता है दास होने से। मैं मेरा दास का दास, मैं दास का सेवा करने से मेरे को आनंद आता है। कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने के बाद तो राजसीय यज्ञ का व्यवस्था हुआ था, राजसीय यज्ञ। ये राजसीय यज्ञ में भगवान कृष्ण तो मीटिंग होता था, सब लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता था, कोई चेयरमैन बनेंगे, कोई कैशियर बनेंगे, कहीं वो बनेंगे, वो बनेंगे, सब बड़ा बड़ा पद सब ले गए। तो कृष्ण भगवान आपको क्या सेवा रहेगा, कृष्ण भगवान ने बताया जितना अतिथि अभ्यागत सब आएंगे उन लोगों को पैर धोना का सेवा मेरा है। ये भगवान का भाव होता है, जो प्रभु वो सेवा करने का भाव होता है। तो इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आध्यात्मिक स्तर में इसलिए झगड़ा करते नहीं, शिव भी बड़ा है विष्णु भी बड़ा है। तो शिव को शिव तत्व का माफिक मानना चाहिए, विष्णु का तो माफिक मानना चाहिए। कोई कोई लोगों ने पूछता है आप लोग भगवान विष्णु को कृष्ण को पूजा करते हैं, देवताओं को मानते नहीं। अरे देवता को मानना चाहिए, देवता को देवता करके मानना चाहिए। अरे पिता को पिता करके मानो, माँ को माँ करके मानना, ठीक है ना, माँ को बाप पिता करके मानेगा ना, पिता को माँ करके मानेगा, जो जैसा ही है। देवताओं को देवता का माफिक सम्मान करो, भगवान का माफिक सम्मान करो, पिता माताओं को पिता माता का माफिक सम्मान करो। सबका एक एक अधिकार होता है, उस अधिकार का अनुसार उनका सम्मान करना चाहिए, अधिकार का अनुसार उनका व्यवहार करना चाहिए, तब सब ठीक चलेगा। तो ये भगवान शिव जी के बारे में बताया, तो शिव जी को पूजा करेंगे प्रार्थना करेंगे। तो शिव जी को एक प्रार्थना कीजिए, भौतिक वस्तु मत मांगिए, शिव जी के पास ये ताकत है वो विष्णु भक्ति दे सकते हैं, उनके पास विष्णु भक्ति भी है। माता दुर्गा देवी वो परम वैष्णव भी है, वो नारायण ही शक्ति है, भगवान का शक्ति है। माता पार्वती दुर्गा का द्वारा ही संपूर्ण भौतिक जगत को भगवान सृष्टि करते हैं। तो उनके पास हम लोग विष्णु भक्ति मांगेंगे तो जल्दी विष्णु भक्ति हम लोग को मिल जाएगा। इस शिव तत्व के बारे में बताया संक्षेप में। अभी कलयुग में जब अवतार होता है, काल में बताया था, प्रभुपाद ने बताया हमारा भारतवर्ष बांग्लादेश में भगवान का फैक्ट्री बैठा हुआ है, ये बाबा वो बाबा कितना बाबा भगवान बन जाता है, जिसको कोई भी जानते नहीं थे, किसी को मालूम नहीं था वो व्यक्ति कौन है। मैं देखता हूं बचपन से कितना भगवान सारे भगवान का उद्भव हुए भारत में, उन लोग का नाम किसी को मालूम नहीं था। तो एक दिन अच्छा कथाकार बन गए तो लोगों ने उनको खूब श्रद्धा करने शुरू कर दी, भक्ति करने शुरू कर दिया, बहुत अच्छा कथाकार है, बहुत कथा सुनाते हैं, परम वैष्णव है, तो क्या श्रद्धा करते शुरू करते हैं। फिर कथाकार से कुछ दिन के बाद लोगों ने उनको गुरु करके मानते हैं। मैं देखता हूँ जो अच्छा कथाकार होता है उनको फोटो लेके हर जगह पर रखते हैं, द्वार में रखते हैं, ऑफिस में टेबल का ग्लास का नीचे रखते हैं, मनी पर्स में रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, वो बहुत अच्छा बात है। कुछ दिन के बाद उनको गुरु करके मानते हैं, तो जब गुरु करके मानते हैं तो हिंदू लोग का घर पर तो ठाकुर घर होता है, भगवान का घर होता है, तो उनका फोटो लेके भगवान का नीचे रखते हैं, पैर का नीचे रखते हैं, और कुछ दिन के बाद उनको भगवान करके मानते हैं तो फोटो को लेके भगवान जिधर बैठे हुए उधर रखते हैं, और कुछ दिन के बाद इतना भक्ति आ जाता है कि भगवान को निकल के सिर्फ उनके उधर रखते हैं। समझ गए, समझते हैं आप लोग, ऐसे लोग भगवान होते हैं। भगवान कोई होते नहीं, कभी इंसान भगवान को बनाते हैं। अभी शास्त्र का अनुसार भगवान इंसान को बनाते हैं, लेकिन आजकल इंसान भगवान को बनाते हैं। कृष्ण राम नारायण वामन नरसिंह ये सब के भगवान बन गए? भगवान बनते नहीं। इधर इधर भी जगह है, सामने बैठो तो नीचे बैठो, और ठीक है बैठे, तो कोई भगवान बनते नहीं। जो भगवान वो हर समय लिए भगवान ही है। कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे, कुरुक्षेत्र रणांगन में थे, तब तो भगवान थे। जब कंस का वध करे तब भगवान थे। व्रत में गोपियों के साथ लीला विलास करते थे तब भगवान थे। बचपन से 3 महीना का उम्र था तो पुतना को मार डाले तब भगवान थे। अघासुर बकासुर को 7 साल उम्र के थे, 7 दिन तक गिरि गोवर्धन को धारण किए, तब तक भगवान थे। वो बड़ा हो के कथाकार बन के फिर भगवान नहीं बने। भगवान कोई बनते नहीं, भगवान हर समय के लिए भगवान ही है। भगवान बचपन में भगवान कृष्ण भगवान उनका मातृगर्भ में प्रवेश करने से करने के टाइम भगवान उससे पहले ही भगवान है। कृष्ण राम नारायण का नित्य धाम होता है, उसी धाम से लीला को प्रकट करते हैं। तो इसलिए शास्त्र का वर्णन अनुसार कलि युग में कोई भगवान का अवतार नहीं होता है। लोगों के शास्त्र के बारे में मालूम नहीं ना, इसलिए जो कोई को भगवान करके मानते हैं, किसका अंदर में थोड़ा सिद्धि देखते हैं, थोड़ा शक्ति देखते हैं, हो ये भगवान है, ये भगवान है, नहीं। तो भगवान का क्या लक्षण मालूम होना चाहिए, किसको भगवान कहा जा सकता है, तो उसका प्रति भगवान शब्द व्यवहार करना चाहिए। वो परम ये लोग महापुरुष हो सकते हैं, कोई व्यक्ति महापुरुष बन सकता है, परम पुरुष बन नहीं पाएंगे। भगवान तो परम ब्रह्म होता है, परमेश्वर होता है, परम पुरुष होता है। जो कोई परम पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर बन नहीं पाते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। महापुरुष का माफी को उनका सम्मान करो। भगवान दूसरा चीज होता है, क कलयुग में भगवान आते नहीं शास्त्र का अनुसार, इसीलिए भागवत में वर्णन किया गया भगवान का एक नाम होता है त्रिजुग, चार युग होता है ना, सत्य तृतीय द्वापर कलि। विशेष करके इस कलयुग में भगवान का रूप का रूप कोई रूप में आते नहीं, त्रिजुग सत्य तृतीय द्वापर में आते हैं, कलयुग में भगवान आते नहीं, तो लोगों का उद्धार होगा कैसा? इसलिए कलिका ने नाम रूपे कृष्ण बता। कलयुग में भगवान आते हैं किस रूप में आते हैं ना, उनका नाम रूप में आते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र रूप में भगवान अवतीर्ण हुए कलयुग लोगों को, अधम पतित लोगों को उद्धार करने के लिए, कोई मनुष्य रूप में आते नहीं, ये शास्त्र का विचार होता है। इसीलिए शास्त्र में भगवान का एक नाम होता है त्रिजुग। इस कलयुग में भगवान सशरीर आते नहीं, कलिकल नाम रूप में आते हैं, और किस रूप में आते हैं ना, भागवत ग्रंथ रूप में आते हैं। कृष्ण सुधामा पवते धर्म ज्ञानाधि सह कलो नष्ट दृशा में सब पुराण को धुनु दिख। आज से 5000 साल पहले जब द्वापर युग खत्म हो जाता है कली युग शुरुआत में, तो बोलता है कृष्ण सुधाम अपगते, जब भगवान श्री कृष्ण सुधाम प्रत्यागमन के धर्म ज्ञानाधि सह धर्म और ज्ञान को सब कुछ को लेकर चले गए, कलो नष्ट दृशा में सब कली युग लोगों का आंख अंध हो गया, देख दृष्टि शक्ति वो लोग दृष्टि शक्ति खो गया, तो कैसे देख पाएंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान उन भागवत ग्रंथ रूप में आए। हरि नाम नाम ब्रह्म, भागवत शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म लोगों को दिग्दर्शन कराने के लिए। तो दो चीज का पर पूर्ण भरोसा रखो, ये दो ही चीज सत्य है कलयुग में, ये दोनों ही भगवत स्वरूप भगवान का अवतार है। एक भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र और एक श्रीमद् भागवत, बस ये दोनों ही हम लोग को ठीक रास्ता पर ले जाएंगे, और जो कुछ हम लोग पकड़ेंगे वो तो पथभ्रष्ट करेंगे। तो कलयुग में नहीं भगवान, शास्त्र का अनुसार भगवान नहीं होते हैं, भगवान का अवतार नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको तो हम लोग भगवान करके मानते हैं, वो तो भगवान का अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य रूप में आए हुए। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान होने से भी कृष्ण भगवान रूप में नहीं आए हुए, वो भक्त रूप में आए हुए, इसीलिए उनका क्षर्ण अवतार बोलते हैं। क्षर्ण तो आच्छर्ण, अंत कृष्ण बहिर्गौ। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कृष्ण भगवान क्यों गौरांग रूप में आए हुए, इस भक्ति भाव को अंगीकार करने के लिए इसका कारण क्या है ना। कृष्ण भगवान आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान उपदेश देके गए भगवत गीता में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ। क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्ति कितना श्रेष्ठ है, भक्त्यमंग अभिजानाति, भक्ति से ही मेरे को तुम जान पाएंगे, प्राप्त हो पाएंगे, सब कुछ बोल के भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले यह धाम को त्याग करके उनका गोलक वृंदावन चले गए। 4500 साल तक भगवान कृष्ण ने अपेक्षा की, मैं तो ज्ञान देके आया, तो पृथ्वी का लोगों ने इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, जीवन में उतारेंगे और जीवन को सुधारेंगे। 4500 साल तक अपेक्षा करने से भी कृष्ण ने देखे कि मैं जो ज्ञान देके आया कलयुग का लोगों का मनोभाव इतना निम्न भाव है, मतलब चेतना इतना पतित है, तो मैं कथा में बोल का है ना, वो लोग समझ नहीं पाए। इसलिए मैं गीता में सब कुछ ज्ञान दे के आने से भी, ज्ञान देने से भी लोगों ने इस ज्ञान को ग्रहण करते नहीं। तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा ना, आपने आचार्य धर्म जीवरे सिखाओ, मेरे को स्वयं जाके आचरण करके जीवों को सिखाने पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण भगवान तिने भक्ति भाव को अंगीकार करके गौरांग रूप में आए हुए, स्वयं भक्ति आचरण करके कृष्ण भक्ति कैसा चीज है लोगों को सिखाने के लिए। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन ये एक कारण होता है, स्वयं आचरण करके जीवों को प्रेम भक्ति सिखाने के लिए, ये तो जीवों को कल्याण के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आने का उनका स्वयं एक स्वार्थ है। क्यों कृष्ण भगवान गौरांग रूप में आए? एक कारण होता है जीवों को कल्याण के लिए, स्वयं आचरण करके भक्ति योग को प्रचार करने के लिए, निज भक्ति योगम स्वप्रेम नामा मृतमत्युतार, स्वप्रेम और नाम देने के लिए भगवान कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान रूप में आए हुए। ये इसको बहिरंग कारण बोलते हैं। और एक अंतरंग कारण होता है जिसे भगवान का कुछ स्वार्थ है, वो कारण क्या होता है? तो कारण ऐसा होता है, भगवान जब कृष्ण रूप में आए हुए तो भगवान है, तो ब्रज गोपियों ने ब्रज बालकों ने कृष्ण का सेवा करता है, तो सेवा को ग्रहण करके भगवान को बहुत आनंद आता है, भगवान बहुत खुश लगता है, मेरा भक्त मेरा कितना सुंदर सेवा करता है। तो सेवा ग्रहण करके बहुत भगवान बहुत आनंद आता है। लेकिन भक्त भगवान का सेवा करके कैसा आनंद आता है वो तो भगवान को मालूम नहीं पड़ता है। तो भगवान सोचते मैं तो भगवान हूं, भगवान का मतलब मेरे को सब तरीके आनंद प्राप्त होना चाहिए, सब तरीके आनंद प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे को तो एक ही तरीके आनंद प्राप्त होता है, मैं भगवान हूं, भक्त में भक्त से सेवा लेने का आनंद मेरा प्राप्त होता है, लेकिन मेरा सेवा करके भक्त कैसे आनंद प्राप्त होता है इस तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो मैं तो असंपूर्ण रह गया, मतलब पूर्ण नहीं हुआ। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, तो पूर्ण ब्रह्म होने से भी मैं तो अपूर्ण रह गया, क्योंकि मेरा भक्त मेरा भक्ति करके सेवा करके किस तरीके आनंद प्राप्त होता है ये अनुभव मेरा नहीं होता है। इसीलिए भगवान का इच्छा हुआ मैं मेरा भक्त का भाव को अंगीकार करके इस धरती पर आऊंगा, तो उससे मेरे को मालूम होगा मेरा भक्त कैसा मेरा सेवा करके आनंद प्राप्त करता है। कृष्ण भगवान ने बहुत तरह का कोशिश की जे मेरा भक्त मेरा सेवा करके कैसा आनंद प्राप्त है होता है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो अंत में उनका ये विचार आया, मैं जब मेरा भक्त का भाव को अंगीकार करके धरती पर जाकर लीला विलास करूंगा तो मेरे को ये अनुभव आएगा ये भक्ति क्या है, कैसा चीज है, भक्त भक्तिमूलक सेवा करके कैसा आनंद प्राप्त होता है। तो कौन सा भक्त का भाव को मैं अंगीकार करूंगा? तो बहुत सारे भक्त है, शिव ब्रह्मा जी नारद सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मांड में कितना सारे भक्त है। तो कौन सा मेरा श्रेष्ठ भक्त है, किसी का भाव को मैं अंगीकार करके इस धरती पर अवतीर्ण होऊंगा? तो भगवान कृष्ण विचार करके देखे जो मेरा जितना भक्त है सब भक्त से श्रेष्ठ भक्त होते हैं ब्रजगोपियों ने, ब्रजगोपियों ने मेरा सेवा करके जैसा आनंद प्राप्त करते हैं दूसरा कोई इतना आनंद प्राप्त नहीं करता है। चैतन्य चरितमृत में इसे वर्णन आता है। तो भगवान जब ब्रज में ब्रजगोपियों ने भगवान का सेवा करते थे उसी सेवा को ग्रहण करके भगवान का बहुत आनंद होता था, बहुत आनंद होता था। तो सेवा का अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों को मुख मुख का दर्शन करते थे, मुख का दर्शन करके भगवान को मालूम होता था कि ब्रज गोपियों को तो मेरे से और हजारों गुना ज्यादा आनंद आता है, मुंह से मालूम होता है ना। किसी का नीम का नीम पत्ता दो, नीम पत्ता खाने से कैसा मुख ऐसा हो जाता है ना, अच्छा रसगुल्ला दो रसगुल्ला आनंद में भर जाता है, तो मुंह देख से मालूम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को मुंह को देखा, ब्रज गोपियों में सेवा करके कितना आनंद पाता है। तो भगवान सोचते हैं अरे ये ब्रज गोपियों से सेवा लेके मेरे को तो आनंद होता है, लेकिन वो लोग का मुंह को दर्शन करके मेरे को लगता है ये लोग मेरे से हजारों गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। अरे मैं तो भगवान हूं, मेरे को सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होना चाहिए, अरे ये लोग मेरे से हजार गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, कोटि करोड़ गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान ये विचार के तो मेरे को ब्रज गोपियों को भाव को लेके धरती पर आना पड़ेगा। तो ब्रज गोपियों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्रज गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। जितना भक्त है ब्रज गोपियों का भक्त भक्ति वो स्पेशल भक्ति है, क्योंकि ब्रज गोपियों का भक्ति भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं था, हाँ सिर्फ भगवान को देने के लिए, भगवान का सुख ही उन लोग का सुख था। आप लोग तो सुने हुए ना, ते नारद मुनि गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, ते तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान कृष्ण ने बताया, नारद तुम जाओ जितना जिसको तुम भक्त करके मानते हो उनको एक बात पूछो, उनको बोलो जो कृष्ण भगवान का बीमार है, सिर दर्द होता है और बुखार है, तो तुम्हारा चरण का रेती दो, रेती को सिर पर लगाएंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो इसको सुन के नारद ने सीधा चले गए ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। जिसके पास गए तो ब्रह्मा जी शिव जी भूस घुसा करने लगे, अरे तुम क्या बताते हो, अरे हमारा मैं चरण का रेती दूंगा, कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है वो सिर पर लगाएंगे तो मैं भी नरक जाऊंगा, नहीं नहीं मेरे को नरक नहीं जाना है, हम लोग नहीं देंगे। जिसके पास गए कोई किसी का भी साहस नहीं हुआ देने के लिए, तो वापस आ गए नारद मुनि, कृष्ण को बताए कोई आप परम ब्रह्म हो, कोई चरण का रीति देंगे आपका सिर पर लगाने के लिए, कोई देने साहस करते नहीं। तो भगवान कृष्ण बताए तुम जाओ ब्रज में, जाए ब्रज गोपियों को बोलो, वो मेरा भक्त भी है उनको पूछो। तो नारद मुनि गए ब्रज में गए, अब ब्रज गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण का विरह में थे, तो नारद मुनि आने से ब्रज गोपियों को ऐसा हो नारद मुनि कृष्ण के बारे में कुछ संवाद ले आए, तो साथ साथ सब ब्रज गोपियों ने नारद मुनि के पास आ गए। ओ नारद मुनि नारद मुनि हमारा कृष्ण कैसा है, तुम की द्वारा कैसे आते हो, मेरा कृष्ण के बारे में कुछ बोलो। तो नारद मुनि बताए द्वारका में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कृष्ण का थोड़ा बीमार है। क्या है बीमार? उनका सिर दर्द है बुखार है। हो ऐसा कि क्या 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 जा सकता है, कैसा उनका बीमार ठीक होगा? नारद मुनि बताए भगवान कृष्ण बताए उनको जो है प्यार करते हैं प्रेम करते हैं, उनका जो भक्त है उनका चरणों का झूला या रेती देने से वो सिर पर लगाएंगे तो उनका बीमार अच्छा हो जाएगा। तो ब्रज गोपियों ने क्या किया, ब्रज गोपियों का तो ब्रह्मा शिव का मतलब इतना ज्ञान नहीं था, ये परम ब्रह्म है परमेश्वर है, वो तो उनको प्राणेश्वर के मानते थे। ब्रज गोपियों ने साथ साथ क्या किया, जितना पैर में रेती था सबको परिष्कार करके एक कपड़ा में पुटली करके पैकेट करके नारद मुनि के हाथ में दे दिए। नारद मुनि तुम अभी जल्दी जल्दी जाओ जगह कृष्ण को दो तो सिर में लगा। नारद मुनि हाथ में पकड़ के इसे देखते हैं गोपियों को, अरे तुम इतना बुद्धू हो, तुम गांव का ग्वालुनी हो, तुमको मालूम है अरे कृष्ण कौन है? अरे ब्रह्मा जी शिव जी उन लोग का साहस हुआ नहीं, तुम लोग इतना अबोध हो इतना मूर्ख हो, तुम्हारा चरण का रेती देता हूँ, कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है उनका सिर पर लगाने के लिए इतना साहस है तुम्हारा, तुमको मालूम है क्या गति होगा तुम्हारा? ब्रह्मा शिव जी का साहस नहीं हुआ, तो क्या गोपियों का मालूम है? तो ब्रज गोपियों ने पूछा कि क्या हमारा चरण का रेती लेके कृष्ण सिर पर लगाने से हम लोग क्या गति होगा? अरे तुम लोग सो नरक जाओगे, नरक जाओगे। तब ब्रज गोपियों ने इतना आनंद हो गया, खुश हो गए, नाचते हो इतना सौभाग्य है, ओ भाग्य हम लोग नरक जा पाएंगे। वो लोग सोचते नहीं, हो मैं नरक जाऊंगी, नहीं 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 तुम्हारा रेती खरीद दे दो, नहीं जाऊंगी। ये ब्रज गोपियों का भावना है। शिव ब्रह्मा का भावना दूसरा है। शिव ब्रह्मा जी कृष्ण को भगवान करके परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा करके मानते हैं, इसीलिए डरते हैं, चरण का रेती नहीं देते हैं। भगवान लीला करते हैं, उनको बुखार है, तो शिव ब्रह्मा सोचते हैं उनको बुखार में मरने दो, हम लोग नरक नहीं जाना, इसीलिए हम लोग चरण का रेती नहीं जाना। तो ब्रज गोपियों का भावना कैसा है? हम लोग नरक जाने दो, कृष्ण का सुख में रहने दो। इसलिए ब्रज गोपियों ने भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। अब ब्रज गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कृष्ण इस कलयुग में राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का भाव को अंगीकार करके गौरांग रूप में आए हुए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु को तो हम लोग भगवान करके मानते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि आप लोग बोलते हैं कलयुग में भगवान का अवतार नहीं, एक गौरांग महाप्रभु को भगवान करके मानते हैं, तो उनका पीछे ये तत्व तो ये लीला है कि कृष्ण आए हुए भगवान, लेकिन भक्त भाव में आए हुए, शरण अवतार, अंत कृष्ण बहिर गौर, प्रेम भक्त को सिखाने के लिए, जीवों को प्रेम भक्ति दिखाने के लिए, देने के लिए। तो भगवान चिर आदत निज गुप्त गीतम स्वप्रेम नाम अमृतमत्व तारम आपामर्ज वितारम गौर कृष्ण जनभ्यतम अहम प्रपद्य। चिर आदत, जो वस्तु कभी भी नहीं दिया गया वो क्या है? वो निज गुप्त गीतम, उनका गुप्त संपद, जो संपद को देखे लोगों ने भगवान को भी खरीद कर पाएंगे। संपद लेके हम लोग तो मकान खरीद करते हैं, जमीन खरीद करते हैं, गाड़ी खरीद करते हैं, लेकिन वो ये ऐसा एक संपद है जो संपद का द्वारा भगवान को भी खरीद कर पाएंगे। वो संपद क्या है? वो प्रेम संपद होता है। ये प्रेम क्या है? प्रेम किससे प्राप्त होता है? चिर अदत निज गुप्त बीतम स्वप्रेम नामा अमृतमत्व तारम, इसको देने के लिए आए। किसको देने के लिए आए? आपा मरद बीत तारम अचंडल ब्राह्मण सबको देने के लिए। ब्रह्मार दुल्ह वस्तु सभाकार जाते, ये गौरांग महाप्रभु का अवतार। तो आज तीन विषय बताया आपको, शिव जी के बारे में बताया, कलयुग में तथाकथित अवतार के बारे में बताया, और गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया। तो मैं अभी आप लोगों को भक्ति के बारे में बताऊंगा। मैं कल बोला था ना, भगवान भक्तर भगवान, भक्त वस्त्र भगवान होते हैं, कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, लेकिन शास्त्र में योगी वस्त्र भक्तवान भगवान बोलते नहीं, ज्ञानी वस्त्र भगवान बोलते नहीं, भक्त वस्त्र भगवान बोलते हैं। वत्सल का मतलब क्या है? वत्सल शब्द सुने हुए? भक्त वत्सल नेपाल में इस शब्द का प्रयोग है, भक्त वत्सल ना। तो भक्त का वत्सल, तो वत्सल शब्द का माने क्या होता है? तो भगवान सबको ही देखभाल करते हैं। जो भगवान का भक्त है उनको देखते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है उनको भी देखते हैं, सबको भगवान ही देखते हैं। लेकिन भक्त को जब देखते हैं तो वत्सल शब्द व्यवहार किया जाता है। तो वत्सल शब्द का क्या अर्थ है? भक्त वत्सल तो सुने हुए, भक्त का अर्थ मालूम है, वत्सल का अर्थ क्या है? वत्सा 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 शब्द व्यवहार है हिंदी में, गो गाभी और वत्सा बछड़ा, बछड़ा मालूम है? बछड़ा
गाय का बछड़ा मालूम है, तो बछड़ा को संस्कृत में बच्छा बोलते हैं, बच्छा बछड़ा। तो बछड़ा को गाय कैसे पालन करते हैं, तो बछड़ा बछड़ा का शरीर में गंदा लग जाता है ना, गाय क्या करता है, कैसे परिष्कार करता है, कैसे सफा करता है, टैप का पानी ढल के सफा करता है, टैप का नीचे खाल करता है, क्या करता है, उसका जुहा करके चाटते हैं ना, वो चाटते हैं, इसको बोलते हैं बछड़ा। गाय ऐसा बछड़ा को जतन करता है, भगवान उनका भक्त को ऐसा जतन करते हैं, भगवान तो सबको पालन करते हैं, सबको नहाते हैं परिष्कार करते हैं, लेकिन टैप का अंदर ले जाते हैं, भगवान के लिए, एक भक्त के लिए। एक गाय बछड़ा को जैसे जतन करता है, भगवान भक्त को ऐसे जतन करते हैं, इसीलिए बोलते हैं भक्त बत्सल भगवान, भक्तर भगवान। तो भगवत प्राप्ति का उपाय के बारे में मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। जो भक्ति से भगवान को प्राप्त होता है, तो भक्ति दो तरीका भक्ति होता है। तो ठीक है, मैं कल बताया भगवान के बारे में जितना विभ्रांति है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार, देवता भगवान नहीं है, विष्णु कृष्ण राम नारायण भगवान है। ठीक है, जितना कलयुग को भगवान उसको बात दो, ये भगवान नहीं है। और गुरु भगवान का प्रेष्ट भक्त है, ये सब तत्व को मैं मान लिया, मैं भगवान को जान लिया, कृष्ण ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है, राम ही भगवान है, उनको ही भक्ति करना श्रेष्ठ है। लेकिन तब भी लोगों ने जो भक्ति करते हैं भगवान को, किस लिए भक्ति करते हैं, ये देवताओं को भक्ति करते हैं, भूत प्रेत को भक्ति करते हैं, कोई भगवान को भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों लोगों ने भगवान के पास जाते हैं, क्यों लोगों ने भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को पाने के लिए। कितना आदमी भगवान का पूजा करता है, इधर बाहर जाओ, इधर लंबी लंबी लाइन है मंदिर में, हाँ सब पूजा थाला लेके ठहरे भगवान को पाने के लिए। अरे नहीं, मेरा पुत्र को परीक्षा में पास करा दो, मेरा स्वामी का बिजनेस में अच्छा होने दो, मेरा लड़की को अच्छा वर प्राप्त कराने दो, इसीलिए। कितना आदमी लाइन में ठहरे होता है, भगवान आपको पाने के लिए मैं आया हूँ इधर, ये नहीं है। भगवान को पाने के लिए कोई जाता नहीं, भगवान को पाने के लिए जाता नहीं, भगवान से पाने के लिए, को नहीं से, सही बात है ना माता जी लोग, भगवान से पाने के लिए जाते हैं, भगवान से लेने के लिए जाता है, भगवान को देने के लिए नहीं। वो देते हैं थोड़ा, 10 रुपये का पूजा देते हैं, 1 लाख का लॉटरी मिल जाएगा हमको, देते हैं देते नहीं, ऐसा नहीं, 10 रुपये का थाला पूजा दूंगा, 1 लाख रुपये का लॉटरी मिल जाएंगे, अब मिल जाता तो हो थैंक यू सो मच, और नहीं मिलता है हो भगवान के बारे में देखते नहीं। हाँ, भगवान के पास भक्ति करते तो कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए। इसलिए दो तरीका भक्ति होता है, एक सकाम भक्ति होता है और एक निष्काम भक्ति होता है। कोई सब कुछ को छोड़ के भगवान को भक्ति करते हैं तो उसको भी अच्छा से विचार करना चाहिए। देखिए, मैं दो दिन तक जो कुछ बताता हूँ, मैं कथाकार नहीं हूँ, मैं कथा करने के लिए इधर नहीं आया हूँ, मैं भागवत कथा बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भक्ति योग का विज्ञान के बारे में बताने के लिए आया हूँ। इसको भक्ति योग विज्ञान बोलते हैं। भक्त लोगों ने तो भगवान के बारे में कथा सुन के तो आनंद पाते हैं, वो सही बात है, वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति जो का विज्ञान भी अच्छा तरीके हम लोग को मालूम होना चाहिए। इसको मैं जो कुछ बोलता हूँ ये भक्ति जो का विज्ञान बोलते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, पर्यालोचना करते हैं, हाँ हमारा आचार्य लोगों ने। तो कोई भगवान को ठीक से समझ पाता है तो उसको सकाम भक्ति बोलते हैं और निष्काम भक्ति बोलते हैं। सकाम भक्त का मतलब कुछ कामना वासना करके भगवान के पास जाते हैं। शास्त्र में बताया गया अकाम सर्वकाम मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजन्ते पुरुषं परम। तो अकाम सर्वकाम मुख्य काम, तुम्हारा भौतिक कामना वासना है, तुम्हारा मुख्य कामना वासना है, नहीं कुछ कामना नहीं, तब भी तुम भगवान को पूजा करो, दूसरे के पास मत जाओ। भौतिक कामना वासना होने से भी भगवान अकाम मुख्य उदार जो बुद्धिमान होते तो भगवान के पास जाते हैं। सकाम वासना लेके भी भगवान को पूजा करो, लेकिन शास्त्र में ये बोलते हैं सकाम से निष्काम भक्ति श्रेष्ठ होता है। निष्काम भक्ति का मतलब क्या है? निष्काम भक्ति का मतलब भगवान से कुछ मत मांगो ना, वो ही नहीं, उतना ही नहीं, ना उतना ही नहीं। ये लगते हैं निष्काम भक्ति का मतलब कुछ कामना वासना के साथ मत जाओ, कुछ मत मांगो, नहीं उतना ही नहीं, उससे ज्यादा है। कुछ मांगने के लिए जाओ ना मत जाओ, ऐसा नहीं। भगवान में आया कुछ मांगने के लिए, ऐसा नहीं, सिर्फ कुछ देने के लिए जाना चाहिए। भगवान को मैं कुछ दूंगा, ये स्पेशल भक्ति होता है। मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका भक्ति होता है। इस भारत में बहुत सारी मंदिर है, उधर तो भगवान बैठे हुए, हजार लोग जाते हैं मांगते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो जो भगवान है वो देने वाला भगवान है, वो देने के लिए बैठे हुए। अरे इस्कन भी मंदिर है और हजार लोग जाते हैं, इस्कन में जो भगवान बैठे हुए एक कैसा भगवान है, बाहर जो भगवान बैठे हुए वो देने वाला भगवान है, और इस्कन का भगवान कैसा भगवान है, ये लेने वाला भगवान है, वो लेने के लिए बैठे हुए उधर। तो भक्ति, भक्ति से, भक्ति का लक्षण होता है भक्ति से लोग भगवान से मांगते हैं, और प्रेम भक्ति से भगवान को देने के लिए चाहते हैं, इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। समझते हैं? प्रेम भक्ति भक्ति से भी श्रेष्ठ है। लोगों ने भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान को मांगते हैं, लेकिन जो प्रेम भक्ति करते हैं वो भगवान को मांगते नहीं, मांगते नहीं, मांगते नहीं, वो भगवान को देने के लिए चाहते हैं। वो प्यार करते हैं ना, सिर्फ प्यार से देने के लिए चाहते हैं, और भगवान उसे और तृप्त हो जाते हैं। आप विचार करके देखिए, कोई आदमी भगवान के पास 10 रुपया पूजा लेके जाएगा, बोलेगा 1,00,000 रुपया भगवान दे दो, भगवान देंगे, तो उससे भगवान को कितना आनंद होगा। और कोई आदमी कुछ नहीं मांगना है, प्रभु मैं तुमको प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमको देने के लिए आया हूँ, उससे भगवान को कितना आनंद होगा। आप लोग विचार करके देखिए, जो भगवान का सुख के लिए, इसको बोलते हैं प्रेम भक्ति। तो प्रेम के साथ भक्ति करता है तो भगवान से लेने के नहीं, भगवान को देने के लिए। अरे हजारों लाखों लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, धनम दही जनम दही जसम दही, भगवान का सिर पीड़ा हो जाता है। अरे सिर्फ लोग आता है दे दो दे दो दे दो, कोई एक आदमी आता है भगवान हमसे कुछ ले लो तुम, हमसे कुछ ले लो तुम, इसलिए भगवान को, हम भगवान को क्या दे सकते हैं हम लोग, इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। भगवान का तो सब कुछ है, क्या नहीं है, भगवान को क्या देंगे, क्या देंगे भगवान का सुख खुश कर पाएंगे ना, प्रेम मन देने से, हमारा मन भगवान को देने से, प्रेम देने से भगवान खुश होते हैं। और प्रेम देने से भगवान इतना खुश हो जाता है, भगवान बोलते हैं मेरा जो ऐसा भक्त है ना, ऐसा भक्त को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, जो सकाम भक्त होते हैं मेरे पास धन संपत्ति चाहते हैं, अष्ट ऐश्वर्य चाहते हैं, मुख्य चाहते हैं, ब्रह्म पद चाहते हैं, मैं दे दूंगा। वो भक्त को मेरे का, वो भक्त को मेरा देने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन जो प्रेम भक्ति करते हैं, ब्रजगोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का जैसा भक्ति करते थे, कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ कृष्ण का सुख के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या बताया मालूम है, भागवत में, भागवत में भगवान ने बताया ब्रजगोपियों को बताते हैं, न पारे अहम निरबद्ध संजुजा स्व साधु कृत विबुधा सपिव माँ भजन दुर्जय गृह श्रृंखला समृत तदवह प्रतिजात साधना। ब्रजगोपियों को बोलते हैं, न पारे अहम, मेरा समर्थ नहीं है, मैं असमर्थ हूँ। न पारे ने मैं नहीं पारूंगा, मेरा समर्थ नहीं है, किसी ले समर्थ नहीं है। और जो भगवान, कौन भगवान होता है? जो सर्वसमर्थ है, जिसका अंदर में सब समर्थ है, उसको भगवान बोला जाता है। लेकिन वो भगवान नहीं बोलते, मैं असमर्थ हूँ, किसी ले असमर्थ हूँ। न पारे अहम निरबद्ध संजुजा, मैं ब्रह्मा का आयु काल पर्यंत कोशिश करूंगा कि तुम ब्रजवासियों ने, ब्रजगोपियों ने मेरे लिए जो कुछ किए उसको प्रतिदान देने के लिए मेरा समर्थ नहीं है। मैं भगवत गीता में बताया, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि हम, जो मेरे को जैसा पूजा करेगा मैं उनको प्रतिदान रूप वैसा ही दे दूंगा। लेकिन ब्रजगोपियों ने, तुम्हारा भक्ति का पराकाष्ठा इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, तो मैं सर्वसमर्थ होने से भी तुम्हारा भक्ति का अनुरूप दान देने का समर्थ मेरा अंदर में नहीं है। भगवान का डिक्शनरी में मैं नहीं पारूंगा, इस शब्द नहीं होना चाहिए, तब भी भगवान बोलते हैं, न पारे अहम निरबद्ध संजुजा स्व साधु कृत विबुधाय सविवह। आप लोग क्या किए ना, माँ भजन दुर्जय गृह श्रृंखला संदेश, मेरा भजन करने के लिए जो गृह का बंधन, इतना गृह श्रृंखला, इतना बंधन का सब काट के तुम आ गए हमारा सेवा करने के लिए, मेरा पास तुम्हारा प्रतिदान देने के लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारा भक्ति से तुम लोग संतुष्ट रहना, तो प्रेम भक्ति कितना बड़ा होता है। तो ये सकाम भक्ति एक होता है, ये निष्काम भक्ति। तो भगवान के पास कुछ मांगना है तो भक्त जाकर एक प्रेम भक्ति को मांगना चाहिए, प्रभु मेरे को ऐसा भक्ति दो तुम्हारा चरण कमल में मेरा प्रेम आएगा। भगवान के पास जाके धनम दही जसम दही ये मांगना जरूरत नहीं है। अरे भक्त सुनते, भगवान तो हमारे लिए कितना नहीं दिया। लोगों ने भगवान को मांगते हैं कुछ प्राप्त होता है तो खुश हो जाता है, नहीं देने से भगवान कितना निष्ठुर है, भगवान क्यों मेरा प्रति इतना निष्ठुर है, क्यों देते नहीं। हर्ष में लोगों ने भगवान देते नहीं, देते नहीं, देते नहीं, भगवान कितना दिया हम लोग को, कुछ कमी दिए हुए भगवान। अरे भगवान कितना बारिश दिए हुए, पानी दिए, कितना अच्छा वायु दिए, सूर्य का रश्मि दिए, फल दिए, फूल दिए, कितना सारी चीज देते हैं। कोई आपका हाथ पे एक ग्लास पानी देते हैं आप थैंक यू बोलते हैं ना, हाँ कि नहीं, धन्यवाद। भगवान इतना पानी देते हैं, कभी भगवान का थैंक यू बताया आप लोग जाके? हाँ, सब लोग तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान ये दे दो, दे दे दो, दे दो, याद करके बोलो, एक आदमी हाथ उठाओ, हाँ मैं भगवान के पास जाके एक दिन थैंक यू बोला, भगवान आप इतना मेरे को दिए हुए, थैंक यू सो मच, कभी तो नहीं हुआ। हाँ, इतना पाने से भी हम लोग थैंक यू बोलते नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जब पाने से भी थैंक यू बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ क्या, स्वार्थी, स्वार्थी में एक कृतज्ञ, हम लोग कृतज्ञता स्वीकार करते नहीं, इतना नीच से हम कृतज्ञ है, जो सब कुछ देता है तो उसको थोड़ा धन्यवाद देते हैं, नहीं देता है, मांगते हैं ना थोड़ा धन्यवाद, दुर्गत मांगते हैं, नहीं मिलने से उसको धिकार करते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो लोग समझ पाते हैं, प्रभु मैं तुमको क्या मांगू, तुम तो बहुत दिए मेरे लिए, इतना दिए हुए तो क्या तुमको मैं मांगू। तो मैं इधर आने से पहले मैं बहुत सोचता था, मैं तो काठमांडू से आया, खूब ठंडी था उधर, अच्छा मौसम था, मैं सुना था बहुत गर्मी है, तो इधर तो ऐसी नहीं है, किधर रहूँगा क्या करूँगा। तो इधर आके जब दो दिन आया तो भगवान इतना एयर कंडीशन बना दिए तो रात को स्लीपिंग बैग लेके सोने पड़ते हैं मेरा लोग का। ये भगवान, भगवान कितना कृपामय, लेकिन उनको कोरोना को कोई देखते नहीं, भगवान वो कृपा को कोई देखते नहीं। मेरे लिए दान दे दो, दान दे दो, अरे भगवान को तुम पाते हैं तो 10 रुपया क्यों मांगते हो? भगवान के पास जाके धनम दे जन्म दे जरूरत नहीं, कर्म का अंतर फल मिलेगा। मेरा स्वामी मेरा पुत्र जो मिलना है वो तो आएगा ही, कर्म का अंतर फल आ गया, इसलिए भगवान को मांगना नहीं कुछ। भगवान के पास बेबी बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, तुम दिमाग मत खटाओ क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, वो बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा क्या भलाई है क्या भलाई नहीं तुमको मालूम नहीं है, इसलिए तुम भगवान को मत मानो। भगवान को ऐसा चीज मांगा कि भगवान दे देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तुमका। भगवान के पास एक बच्चे का माफिक हो जाओ, बच्चे होते हैं ना 6 महीने का बच्चा 2-3 महीने का बच्चा, उनको मालूम है क्या खाना है क्या नहीं है, खाना है कैसा सोना है कुछ भी मालूम नहीं, माँ सब कर देते हैं, माँ सब यही सब आते। तो भक्त भगवान को मांगते नहीं, प्रहलाद महाराज भगवान को नहीं मांगते थे लेकिन भगवान सब, प्रहलाद महाराज को मालूम नहीं होता था कब खाते हैं कब सोते हैं कब नहाते हैं, सब भगवान आलिंगन करके बैठे हुए हैं, भक्त ऐसा करते हैं। तो भगवान के पास जाके क्यों मांगेंगे तुम? प्रभुपाद बोलते हैं टाटा बिरला तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, टाटा बिरला मालूम है ना, नेपालियों को मालूम है टाटा बिरला, बहुत बड़ा आदमी बहुत धनवान है। टाटा बिरला बोलेगा ओ मैं तुम्हारा बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या मांगना है? वो टाटा बिरला जी मेरे 10 रुपया दे दीजिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है माता जी, बुद्धिमान का काम है नहीं। तो भगवान के पास जाएंगे धनम दे जन्म दे जसम दे क्यों मांगेंगे? और भगवान क्या बोलते हैं मालूम है? भगवान बोलते हैं आमा भजे विषय मांगे यही बड़ा मूर्ख। अरे मेरा भजन करते हैं तो विषय सुख मांगते हो, तुम नंबुरान मूर्ख हो। आमा भजे विषय मांगे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ अरे विषय क्यों दिम, तो मैं तो अज्ञ नहीं हूं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं इसको क्यों विषय कूप में डुबा के रखूंगा? अरे विषय क्यों दिम, स्व चरणामृत दिया अरे विषय छोड़ाई, मैं मेरा चरणामृत पान कराऊंगा, मेरा प्रसाद पान करा के इसको विषय से खींच के ले आऊंगा, विषय का बंधन से। ये भगवान का विचार होता है, देवताओं का विचार दूसरा होता है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये भगवान और देवता में ये अंतर होता है। देवताओं के पास जाके जो मांगे के धनम दे जन्म दे दशम दे तथा दे देंगे, लेकिन भगवान के पास जाके मांगेंगे तो भगवान 10 बार सोचेंगे इसको मैं दूंगा ना नहीं दूंगा। इसलिए भगवान विष्णु को ज्यादा पूजा करते नहीं, शिव काली इंद्र का लंबा लाइन पड़ा है, पशुपतिनाथ जाओ लंबा लाइन पड़ा है, विष्णु मंदिर में ज्यादा जाते नहीं लोग, क्योंकि विष्णु मंदिर जाने से उधर देखे नहीं ले लेंगे सब तुमसे, डरता है विष्णु के पास जाने के लिए, विष्णु भगवान तो लेने वाला ना और देने वाला नहीं, तो सब लोग देने वाला भगवान को ढूंढते हैं, देने वाला भगवान किधर है मेरे को चाहिए। साई बाबा के पास जाते हैं, साई बाबा को जाने से जो कुछ मांग के मिल जाएगा वही भगवान सही भगवान है, नहीं देने वाला भगवान को मत ढूंढो, लेने वाला भगवान कौन मेरे से लेंगे? तो कृष्ण भगवान वो प्रेम लेने का बैठा हुआ है, देने से आनंद है लेने से आनंद नहीं होता है। प्रेम का मतलब देना, देना बुद्धिमान का काम, लेना का बुद्धिमान काम नहीं। प्रेम, प्रेम से किसी को देंगे तो आनंद होता है, और काम से, काम का मतलब लेना। हम लोग आपस में प्यार करते हैं ना, बोलते मैं तुमको प्रेम करता हूँ, अरे प्रेम करता नहीं करता हूँ काम करता हूँ, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं है मेरा काम है, मैं कुछ तुम्हारा पॉकेट खाली करने की कोशिश करता हूँ, कुछ पाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसलिए पुराण में ऐसा वर्णन आया असुर और देवता होते हैं, असुर और देवता ये दोनों भाई होता है, मालूम है आप लोगों को? ये दोनों एक पिता का पुत्र होता है। कश्यप मुनि का दो पत्नी दीति और अदिति, दीति का पुत्र जो होता है वो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, और अदिति का पुत्र आदित्य देवता होते हैं। तो हर समय तो देवता और असुर में झगड़ा चलते रहते हैं। तो एक बार दोनों बहुत झगड़ा लगा, तो देवता ने बोलते हैं हम बड़ा है, असुर बोलते नहीं हम बड़ा है, तो बहुत झगड़ा लग गया। तो देवता ने बोले अरे ठीक है हम दोनों तो भाई भाई है, हम लोग आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है, देवता बड़ा है ना असुर बड़ा है, एक काम करो हम लोग पितामह ब्रह्मा के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी को पूछेंगे आप बताइए देवता बड़ा है असुर बड़ा है, ब्रह्मा जी जो बताएंगे जिसको बड़ा करके मानेंगे वही बड़ा होगा। तो दोनों असुर और देवता ब्रह्मा लोग चले गए ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा के पास जाके बताए पितामह ब्रह्मा हम लोग एक प्रश्न का उत्तर देने पड़ेगा, क्या क्या प्रश्न है ना आप बताइए, देवता लोग अच्छा और बड़ा है ना असुर लोग बड़ा अच्छा है? तो ब्रह्मा का तो अच्छा देर का मालूम है कौन अच्छा है, देवता लोग अच्छा है असुर लोग अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा डरते हैं मैं ऐसा स्ट्रेट कट बता दूंगा तो असुर लोग पकड़ के मेरे को देंगे मेडिसिन अच्छा से, तो उसको संभाल के बोलना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट कट आंसर नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कुछ पता है नहीं, तो मतलब अरे तुम्हारा तो मेरा नाती पोती हो, तुम्हारा मेरा घर पर आए हुए, तो पहले तुम लोग अच्छे से खिलाऊंगा बाद में उत्तर दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा फीस्ट बनाए, चावल दाल सब्जी रोटली रसगुल्ला जिलापी जितना है, और ब्रह्मा लोग और कितना आइटम होगा सब आइटम मिला के बहुत बड़ा भोज बनाए। सब बनाने के बाद अभी तो रेडी हो गया तुमको खाने पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का डाइनिंग रूम जो खाने का घर थोड़ा छोटा था, तो सब लोग एक साथ में खा नहीं पाएंगे, ग्रुप ग्रुप करके खाने पड़ेगा। पहले देवता लोग तुम बैठ के खा लो, और सेकंड बैच में असुर लोग बैठेंगे। तो असुर ने बहुत गुस्सा किया, क्यों हम लोग थोड़ा कमी है, हम लोग पीछे खाएंगे, हम लोग पहले खाएंगे। तो देवता लोग ठीक है वो लोग को पहले खा लेंगे। तो असुर लोग खाने के लिए बैठ गए, तो टेबल लगा हुआ है, तो सही सब आइटम प्लेट पर आता है। तो ब्रह्मा जी ने अनाउंसमेंट की, किसी को नहीं खाना, मैं जब तक निर्देश नहीं देता हूँ तब तक खाना नहीं देंगे, मैं जब बोलूँगा खाओ अभी तब खाना है। तो सब असुर बैठ गए और देखते हैं अच्छा सा खाना प्लेट पर आ गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कुछ लोग को भेजे एक छोटा छोटा लाठी देखे लकड़ी कहाँ लाठी और किसी रस्सी दे के भेज दिए, बोले ये जितना असुर लोग बैठे हुए खाने के लिए उन लोग डाइन हाथ को ये लाठी को ऐसा रखो रस्सी देकर बांध दो ऐसा बांध दिए, तो हाथ ऐसा खड़ा हो गया। तो होने के बाद तो ब्रह्मा जी ने बताया अभी खाओ अभी तुम लोग खाओ, तो कैसा खाएगा हाथ तो ऐसा कर नहीं पाते है ना, लेकिन अच्छा अच्छा आइटम है, तो लेकिन खाने का मैं कैसे पाऊंगा ये लोभ है, तो उसको भात को ऐसा माख के मिक्स करके इधर से खाते हैं फेंकते हैं, तो रसगुल्ला गिर जाते हैं पकड़ा गिर जाते हैं आंखों में पड़ते हैं गालों में पड़ते हैं, और देवता लग से हाथ कर लेते हैं हंसते रहते हैं और असुर और जलते हैं और जलते हैं। ये खाने का इतना लोभ है, लोग तो संभाल पाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं बहुत तरह का। फिर बाद में लोग गुस्सा करके उठ गए, खा नहीं पाते थे गुस्सा करके उठ गए। तो असुर लोग को चले गए, तो देवताओं का भी टर्म आ गया, देवता लोग बैठ गए। तो असुर ने आके ब्रह्मा जी को बोलते ब्रह्मा जी देवता लोग को भी ऐसा करना चाहिए, हमारे जैसे हाथ बांधे थे ये लोग भी ऐसा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी हाँ वो लोग भी ऐसा किया जाएगा। तो असुर लोग सोचते हैं हाँ अभी देवता लोग तो ऐसा करेंगे हम लोग भी हंसेंगे, हम लोग जो ऐसा करते थे वो लोग हंसते थे, तो देवता लोग भी खा नहीं पाएंगे हम लोग हंसेंगे। सब असुर लोग चार तरफ ठहरा है, तो देवता लोग बैठ गए डाइनिंग टेबल है, देवता लोग एक लाइन इधर है और एक लाइन उधर है, हाँ फेस टू फेस करके बैठे हुए। सो आइटम आ गया, अब ब्रह्मा जी ने लाठी रस्सी भेज दिए, सो हाथ बांध दिया ऐसा खड़ा हो गया। तो असुर लोग ने अपेक्षा करते हैं, अभी देखेंगे देवता लोग ऐसा खाएंगे तो हंसेंगे। तो देवता लोग सोचते हैं तो खा नहीं पाऊंगा मैं क्या करूँ। एक देवता ने ऐसा सोचा, ठीक है मैं नहीं खा पाता हूँ तो ठीक है, मैं नहीं खाने से क्या होता है। वो क्या क्या सब अच्छा से राई दल से मिक्स करके, वो तो ऐसा कर नहीं पाता है ना, वो मिक्स किया, वो सामने जो देवता था उसके मुँह में दिया और वो मिक्स करके उसके मुँह में दिया। ऐसे जितने देवता थे सब अच्छे से परिष्कार करके खा लिए। तो असुर लोग ऐसा देखते हैं, अरे हम लोग क्यों नहीं कर पाया ऐसा। ये फर्क होता है देवता और असुर में, समझते हैं। देवता असुर ने मुझको कितना मिलेगा, देवता ने सोचा ना मुझको कितना देना, मैं उनको देना, समझता है। ये देना को प्यार बोलता है, प्रेम बोलता है, लेना को काम बोलता है। असुर का गुण कितना मैं लूंगा, देवता गुण कितना मैं दूंगा, लेकिन देने से मिलता है ना। वो आपस में खा के भर गया पेट बस। तो भक्त और भगवान का भाव ऐसा होता है, भक्त भगवान से देने के लिए चाहते नहीं, भगवान को देने के लिए चाहते हैं। और भगवान को ऐसा चीज देते हैं, भगवान बोलते हैं हे मेरा प्रिय भक्त, मेरे पास तुमको लिए प्रतिदान देने के लिए कुछ भी नहीं, तुम मेरे को प्रेम देते हो, ये प्रेम का प्रतिदान मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या तुमको दूंगा, स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग प्राप्त कर दूंगा। जो प्रेमी भक्त को भगवान बोलता है, हो भक्त मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग दे दूंगा। फिर भगवान मुंह को नीचे की ओर लज्जित होता है, ओह मेरा इतना प्रेमी भक्त को स्वर्ग ही दूंगा, वो तो कुछ भी नहीं, नहीं नहीं मैं तुमको ब्रह्म पद दे दूंगा। फिर भगवान सोचता हूँ मैं कितना बेशरम हूँ, इतना प्रेमी भक्त को ब्रह्म पद दे दूंगा, नहीं नहीं तुमको अष्ट ऐश्वर्य दे दूंगा, हाँ सिद्धि दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। भगवान जितना ही सोचते हैं भक्त को देने के लिए, फिर पश्चाताप करता है, न मैं कितना मूर्ख हूँ, इतना ही मेरे को प्यार देता है, मैं इतना दूंगा। से सोच के भगवान के पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मैं क्या प्रतिदान दूंगा। तो भगवान क्या देते हैं, भगवान क्या देते हैं, हाँ प्रेम तो भक्त देते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त तुमको मेरे को इतना प्यार करता है, मेरे पास तो कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको तुम्हारा हाथ में समर्पण कर देता हूँ। क्यों भक्त रे भगवान, इसीलिए भक्त रे भगवान। भगवान का एक समय आता है जब भगवान सोचते हैं, हे भक्त तुम मेरे लिए जो किस किया ना उसका प्रतिदान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको तुम्हारे हाथ में समर्पण कर देता हूँ। इसीलिए बोलते हैं प्रेमाधीन, प्रेमेर अधीन होता है। इसीलिए बोलते भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र साधु विग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय। तो ये भक्ति का पराकाष्ठ होता है। तो अहम भक्त पराधीन बोलते हैं, तो भक्त इतना बड़ा हो जाता है तो भगवान को भी अधीन करना। तो वो इतना श्रेष्ठ प्रेम भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आए हुए। आप लोग देखिए विचार करके, मैं दो दिन में जो बताया, लोगों ने कितना तुच्छ वस्तु प्राप्त करने के लिए इसका पूजा करते हैं, उसका पूजा करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, भूत प्रेत को पूजा करते हैं, ये भगवान के पास दौड़ता है, वो भगवान के पास दौड़ता है। लेकिन भगवत तत्व कितना महान होता है और उस स्तर में भक्त और भगवान का संपर्क कितना श्रेष्ठ होता है, उसमें से भक्त और भगवान कितना आनंद आता है और वो आनंद का संधान ही नहीं हमारा पास। इसलिए छोटा मोटा आनंद का पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। तो ये है अंतर्जातीय कृष्ण। तो ये होता है, ये हमारा अंतर्जातीय कृष्ण भावन में संघ का ये शिक्षा होता है। हाँ तो ये भक्ति का श्रेष्ठता बोलता है, भक्ति कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। तो ये भक्ति कैसा प्राप्त होगा, जो प्रेम मैं बताया प्रेम इतना श्रेष्ठ है, तो प्रेम कितना कैसा प्राप्त हो सकता है। तो लाइट जब करंट आएगा मैं दो चार मिनट में बताऊंगा ये प्रेम प्राप्ति का क्या उपाय है।